सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में उपस्थित है, आत्मरूप से विद्यमान है सभी भक्तिमती माताओं और सत्संग प्रेमी सज्जनों का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। कई वर्षों से आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं मुझे निमित्त बना करके। तो पहले एक ग्रंथ हुआ था प्रबोध सुधाकर, आप लोगों के ही संकल्प से वो पुस्तक भी छप गई। फिर सोचा कि देखो गीता जी रामायण आदि ग्रंथों पर, रामायण आदि ग्रंथों पर प्रवचन आप लोग बहुत सुनते ही रहते हैं और उनकी बहुत ज्यादा सीडियां भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ग्रंथ है सनत सुजातीय, बहुत गंभीर ग्रंथ है। हम तो जितनी बार इसको देखते हैं उतनी बार एक ठोकर लगती है हृदय पे कि हम जा कहां रहे हैं और हमारा शास्त्र हमें कहां निर्देश कर रहा जाने का। बहुत ज्यादा ठोकर मारने वाला भी ग्रंथ है और वास्तव में ठोकर हम लोगों को बिना मजबूत ठोकर लगे ना, ये हृदय की जो ग्रंथि है ना वह टूटेगी भी नहीं। कहते एक साधारण जोड़ होता है फेविकोल का, उसको तो यूं खींचो तो शायद हो सकता है छूट भी जाए, लेकिन एक जोड़ होता है फेवी क्विक का कि चिपक जाता है तो एक चमड़ी लेके ही निकलता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उस जोड़ को खोलना। उसी तरह से हम लोग संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में इतने चिपके हुए हैं, इतने आसक्त हैं कि उनको छोड़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। भले हम कहें हमने छोड़ दिया, हमने त्याग दिया, लेकिन सच बताऊं दिल से कि अब कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ त्यागा नहीं है। जब तक अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ना तब तक लगता है सब कुछ ठीक ही है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो पता चलता है कि हमारा त्याग कितना बड़ा है। जब तक सम्मान मिलता है ना तो मैं हमेशा समझता हूं मेरे को ना अपमान से कोई डर नहीं है, हम तो मान सम्मान से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन जब अपमान मिला ना तो तुरंत क्या होता है, दुख हुआ। तो दुख हुआ इसी से सिद्ध हो रहा है कभी सम्मान की भूख है। अपमान में यदि दुख न हुआ होता तो समझ जाते कि सम्मान की भूख नहीं है, लेकिन अपमान में दुख हुआ इसका मतलब सम्मान की भूख है। जब तक धन मिलता रहे ना लगता है कि मैं धन उनसे कोई देवे तो ना देवे तो एकदम पूरे परे हट गए हैं, लेकिन जब धन का नुकसान हो जाए तो नुकसान होने के बाद जो दुख होता है तो दुख यदि हो रहा है तो वह दुख यही सिद्ध कर रहा है कभी धन की आकांक्षा है, धन के प्रति लोभ है। यदि धन के नष्ट हो जाने पर भी दुख न होता, चिंता न होती, तो गारंटेड कहा जा सकता था कि आपके भीतर धन का लोभ नहीं है। लेकिन अभी दुख है, वह दुख पता चलता है कब? अभाव में। जब तक बच्चे सब अनुकूल चल रहे हैं तब तक लगता है कि हमें किसी से कोई मोह नहीं है। बच्चा नौकरी कर रहा है, पर मंथ भेज दे रहा है, स्वस्थ है, बहु समझदार है, आज्ञा मानती है, तब तक हमें लगता है कि हमें परिवार में किसी से कोई मोह है नहीं, किसी कोई चिंता है नहीं। उस परिवार में किसी भी व्यक्ति को कुछ हुआ होने के बाद आप चिंता से ग्रस्त हो गए तो यह सिद्ध करता है कि अभी आप उस परिवार के उस बंदे से या किसी न किसी बंदे से आपका मोह है। यदि मोह न होता तो कभी आप चिंता से ग्रस्त होते नहीं। तो उसी मोह का प्रतीक हमारे जानते हैं धृतराष्ट्र महाराज हैं। राज्य का मोह धृतराष्ट्र, जिसने राष्ट्र को, राष्ट्र माने अनात्म वस्तु को पकड़ करके रखा हो उसका नाम क्या है? धृतराष्ट्र। देखो गद्दी को पकड़ के रखा नहीं, अंधा अंधे होते हुए भी, और सही बता धृतराष्ट्र ही अंधा नहीं है। जिसने अपने आप को नहीं जाना वह सबके सब अंधे ही हैं, सबके सब धृतराष्ट्री हैं। जिसकी आंखें अपने स्वरूप में नहीं खुली, जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ, अनात्म विषयों को, अरे आप लोग बोलते नहीं, बोलते रास्ते में जा रहा हो कोई गड्ढे में गिर जाए तो क्या बोलते हो? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या भाई? कोई जा रहा हो, कोई किसी को ठोकर लगा देवे, ठोकर खा के गिर पड़े, या तो जिससे ठोकर खाते हो वह व्यक्ति आपको कोसता नहीं क्या? अंधे हो क्या? दिखता नहीं क्या? उसी प्रकार देखा जाए कि सच में हम लोग अंधे ही हैं, हम लोग धृतराष्ट्रीय हैं, कि जहां हमें जाना चाहिए वहां हम जाते नहीं हैं, और जान बूझ करके गड्ढे में ही गिरते हैं। कौन सा गड्ढा है? विषय रूपी जो कूप है, विषय रूपी जो गड्ढा है, उस गड्ढे में हम गिर रहे हैं। जो वस्तु छूट जाने वाली है, ये राष्ट्र है, परिवार है, छूटने वाला है। छूटने वाली वस्तु को छूटने वाला नहीं समझते हैं, उसको हमने पकड़ करके बैठे हुए हैं। इसी वृत्ति का नाम है धृतराष्ट्र। तो हम सब एक माने में देखें, वो धृतराष्ट्र अंधा नहीं था, बल्कि हम सब ही धृतराष्ट्र हैं। और चलो गनीमत है कि वो धृतराष्ट्र कम से कम मृत्यु के समय में भी होश में आया। इस ज्ञान को पा करके सनत कुमार ने जो ज्ञान धृतराष्ट्र को दिया, उस ज्ञान के प्रभाव से धृतराष्ट्र को होश आया, भले मृत्यु काल में आया हो। आप सुने ही हो, जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तो उस समय युधिष्ठिर ने आज्ञा दिया था कि उनका ताऊ हुए ना, उनका कोई तिरस्कार नहीं करेगा। लेकिन भीम को जब मौका मिलता था ना, खरी खोटी सुनाता ही था, ये बुद्धि के कारण हम लोग इतना दुख भोगे हैं, ये न मरेगा, जिससे लड़वाया है उसी की रोटी खा रहा है, इसको शर्म भी नहीं आती है। जब भी मौका मिले भीम कुछ कुछ खरी खोटी सुनाई देता था। तो एक दिन इनको बड़ी अंदर से ग्लानी हुई, और अंदर अंदर ही उन्होंने खाना पीना लगभग बंद सा कर दिया। एक दिन चक्कर खा के गिरे, और चक्कर खा के गिरे तो उस समय सारे पांडव आदि आए, तो कुछ दान दक्षिणा दिया, लोगों से माफी मांगी, और उस समय गांधारी को लेकर के जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। उस समय उनका साथ देने के लिए कुंती भी जाती है, अब सोचना। जबकि कुंती को रोकने के लिए उनके चारों बच्चे लायक थे कि ना लायक थे बताओ भाई। पांचों बच्चे कुंती के लायक ही तो थे, पांचों पांडवों में कोई कमी थी क्या अपनी माँ के लिए? और माँ के जाने का उनमें बड़ा विलाप भी की, एक माँ सारी जिंदगी तूने दुखी तो भोगा है। देखा जाए जब से विवाह हुआ कुंती को क्या सुख मिला? विवाह के बाद ही माद्री आई, सवत मिली, जब पुत्र पैदा हो गया पति की मौत हो गई, पति की मौत के बाद क्या कहते हैं कि राज्य की लड़ाई, राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र बने और विमाता को जैसा या दूसरी औरत को जो राज्य का उत्तराधिकारी जिसका बेटा हो उसको कितना प्रताड़ित किया गया, कितना कष्ट उनके बेटों को राज्य से निकाला गया, चीरहरण किया गया, जहर पिलाया गया, हर पल दुख है। हे मां सुख भोगने का मौका आया है तो सुख के मौके पर तुम क्या कर रही हो? दुख भोगने के लिए फिर जंगल जा रही हो? ये कोई बुद्धिमानी है क्या भाई? आप लोग भी तो अपने माता पिता को यही तो समझाते हो कि पिताजी सारी जिंदगी आपने संघर्ष किया, दुख किया, आज हमें सेटल किया, अब तो सुख भोगने का अवसर आया है, अब आप आनंद से रहो। लेकिन आनंद का अवसर छोड़ करके आप जंगल जा रहे हो, ये कोई बुद्धिमानी की बात है ही नहीं। अब बच्चों ने जो समझाया माँ को, आज की दृष्टि में आपको उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो माँ ने क्या कहा? बेटा आज तक मैंने तुम्हारी जिंदगी जी थी, तुम्हारा राज्य अधिकार है तेरे से छीन लिया गया था, इसलिए मैंने तुम्हें उत्तेजित किया था कि जिस दिन के लिए छत्राणियां पुत्र पैदा करती हैं वह दिन आ गया है, तुम अपने अधिकार को छीनो, अपना अधिकार पाओ। आज तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल गया, तुम्हारी व्यवस्था हो गई, रहने खाने पीने की व्यवस्था हो गई, अब मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीना है, तो अब मैं तप करके अपना परलोक सुधारूंगी, अपने इनकी जेठ और जेठानी की सेवा करके हम अपने पुण्य कर्म कमाने हैं। बच्चों की एक नहीं सुनी और कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ सप्त सरोवर आश्रम में गई। और जो सनत कुमार ने उपदेश दिया था उस उपदेश का चिंतन करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया और शरीर के त्याग के पश्चात उनकी मुक्ति हुई। इसकी धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती मुक्त हुए हैं। यहां तक कि कहते भीष्म पितामह भी, अब हम तो ये नहीं बोल सकते मुक्त हुए, वेदांत की दृष्टि में सभी मुक्त हैं, कोई बंधन में तो है ही नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र भी मरने के बाद यहां से गए और आठवें वसु बन गए, भीष्म पितामह यहां से मरने के बाद कहां गए? आठवें वसु बन गए, मतलब देवलोक में गए फिर अपनी गद्दी संभाले। लेकिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती किसी लोक में नहीं गए, न तस्य प्राणाह उत्क्रामंती, उनके प्राणों का उत्क्रमण इस लोक से उस लोक नहीं हुआ, बल्कि ये सब क्या हुए हैं? मुक्त हुए हैं। इनका एक प्रभाव था। युधिष्ठिर भी यहां से गए, धर्मराज के अपने पद पर प्रतिष्ठित हुए, सब लोगों का कोई न कोई जहां से आए थे उस पद को संभाले, इनकी मुक्ति की प्राप्ति हुई। क्यों मुक्ति की प्राप्ति हुई? क्योंकि इन्होंने सनत कुमार के द्वारा दिया हुआ इस ज्ञान का चिंतन किया। तो ऐसे धृतराष्ट्र को जो हथौड़ी मारी है सनत कुमार ने, यह हथौड़ी कब मारी आप सबको याद है? भूल गया, हम ही भूल गए थे तो आप कहां याद रखोगे? एक साल के अनंतर में देखो युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी हैं दोनों पक्षों में, उस समय अंतिम समझौते के लिए संजय जाते हैं, पहले संजय गए हैं बाद में भगवान श्री कृष्ण आए हैं इधर समझाने के लिए। तो संजय देखे कि पांडवों की सेना जो भी इकट्ठा किए थे सात अक्षौड़ी सेना युद्ध के लिए एक घायल सांप की तरह फुफकार रही है। अब भाई जहां इतनी अशांति होवे, इतना क्रोध होवे, इतना बदला लेने की भावना होवे, संजय को उन सबको समझाने की हिम्मत क्या समझाएं भाई? जिसके साथ अत्याचार पर ही अत्याचार हुआ है उसको कितना दबाया जाए, कितना समझाया जाए, तो समझाए तो नहीं, वहां से वापस आए देख करके। अधित्राष्ट्र कहते हैं कि अब जो युद्ध होगा ना, वह युद्ध महा विनाशकारी होगा, और इस युद्ध का क्या ठीकरा तुम्हारे सर पर फोड़ा जाएगा, मतलब इस युद्ध के जिम्मेदार स्वयं तुम होगे, और सारी तुम्हारे मरने के बाद भी सारे लोग तेरे को कोसेंगे कि यदि धृतराष्ट्र संभल गया होता तो इतना भयानक युद्ध होता नहीं। और सही बताऊं, कभी कभी लगता है युद्ध न होता ना तो आज भारत कुछ और ही भारत होता। जो अर्जुन ने संशय जाहिर किया था, विनाश हो जाएगा, वो संक्रमण की संतानें पैदा हो जाएंगी, धर्म कर्म संसार में च्युत हो जाएगा, सही बताऊं जो अर्जुन ने संशय जाहिर किया था आज वही तो हो रहा है, और क्या। अर्जुन भी विचारशील थे, उन्होंने भविष्य देख लिया था, स्थिति वही हुई और क्या हो रहा है बता। नहीं तो अपना अफगानिस्तान ईरान तक पूरा क्या था, भारत था, और कहीं भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति राजा बना होता तो कुछ भारत की शान और ही होती। लेकिन चलो किया भी क्या जाए, इसके जिम्मेदार कौन है, आप ही होंगे, सारी जिंदगी लोग आपको कोसते रहेंगे कि तुम्हारे ही कारण, जैसे आज भी हम लोग कोसते हैं ना भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए, किसी का नाम लेके कोसते नहीं कोसते हैं कि आज कहीं वो पीएम बने होते तो आज कुछ भारत और ही होता। हम यहां राजनीतिक नहीं बोलेंगे, नहीं कई लोग किसी पार्टी के होंगे, लेकिन आज आप लोग कोसते नहीं कोसते इनके कारण, आज चाहे जम्मू कश्मीर का लड़ाई झेल रहे होंगे, चाहे जहां की लड़ाई झेल रहे हैं, हम लोग दुख सरे नहीं सरे किसके कारण, एक व्यक्ति के कारण। तो सारे युद्ध के जिम्मेदार आप हो गए, सारी प्रजा में जो विध्वंसता पैदा होगी उसके भी जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। अब भाई अपने ऊपर कलंक कौन लेना चाहेगा। धृतराष्ट्र बड़े परेशान हो गए, रात में ही विदुर को बुलाते हैं, रात 12 बजे विदुर आकर के पूरा उपदेश इनको देते हैं, धर्म का, नीति का। कहते हैं विदुर तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही है, और सुनाओ और सुनाओ। कहा विदुर जी, कहते हैं सुद्रियोनो अहम जातो, मैं सुद्रियोनी में पैदा हुआ हूं भगवान, आगे का उपदेश देने में मैं समर्थ नहीं हूं। यदि आगे का उपदेश आपको सुनना हो तो मैं सनत कुमार का आवाहन करता हूं, और सनत कुमार आपको आगे का उपदेश देंगे। तो उन्होंने, विदुर जी ने ही सनत कुमार का आवाहन किया, आवाहन करके सनत कुमार को बुलाया, और सनत कुमार आए तो जो उपदेश सनत कुमार ने धृतराष्ट्र को दिया उस उपदेश का नाम ही है सनत सुजातीय। इस उपदेश में है क्या तो बताया, देखो हम सब सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म ही हैं। हम सब क्या है, सत्य स्वरूप हैं, कभी न मरने वाले हैं, हमारा एग्जिस्टेंस हमारी सत्ता हमेशा रहने वाली है। लेकिन क्या हम अपने आप को ऐसा मानते हैं क्या। सर सूर्य महाराज जी, देखो मेरा जन्म कब हुआ है, अब मरेंगे कब, सही बताओ आप मरोगे ही नहीं। दूसरे की दृष्टि में भले आप मर गए, लेकिन अपनी दृष्टि में आप कभी आज तक मरे ही नहीं हो, न कभी आप मरोगे। भाई यहां हम सोए हैं, कहां, मुंबई में, अब मुंबई में सोए हम अपने आप को हरिद्वार देख रहे हैं, तो हरिद्वार देखते हुए क्या हमें लगता है कि मैं मुंबई में सोया था, लगता मैं आज 16 तारीख को कहां, मैं तो कई महीने से कहां कहीं गया ही नहीं, कहां रह रहा हूं, हरिद्वार में रह रहा हूं। जैसे इस मिथ्या शरीर में मैं बुद्धि कर लिया, स्वप्न में दूसरे शरीर में हमने क्या किया, मिथ्या बुद्धि किया, तो जो जिसने बुद्धि किया इस शरीर को अपना माना अथवा स्वप्न वाले शरीर को अपना माना, वो तो हमेशा ही था, उसको ये नहीं लगा कि मैं यहां से मर गया हूं, वहां पैदा हो गया हूं। ऐसे मरने वाले को ये कभी एहसास होगा ही नहीं है कि मैं मर गया हूं। ध्यान दें, मरने वाले को कभी एहसास नहीं होगा कि मैं मर गया हूं। वह तो हमेशा क्या है, सत्य स्वरूप है, उसकी सत्ता, उसकी एग्जिस्टेंस। भाई जैसे बच्चा था तो मैं था नहीं था बताओ, बचपना मरा कि नहीं मरा, जवानी आई, जवानी में भी वही मैं हूं जो बच्चा था, बुढ़ापे में भी बाल सफेद हो गए फिर भी मैं वही हूं। यहां तक ये शरीर भी छूट जाएगा, हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा तो दूसरे शरीर में भी मैं वही रहूंगा, ये नहीं कि मैं बदल गया। तो हमारी सत्ता हमेशा ही रहेगी, चित्त स्वरूप है, चैतन्य माने आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं, हम सब खुद जानते हैं। सबको जानने का मतलब क्या हुआ, पांच ही विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन पांचों विषयों को कौन जानता बताओ, आंख के माध्यम से रूप काला नीला पीला मैं जानता हूं, शब्द के माध्यम से और कान के माध्यम से मधुर और कटु वचन को भी मैं जानता हूं। बड़ा शोर हो रहा है, इसको जानने वाला कौन हुआ, मैं ही तो हुआ। भोजन देखा, इसका जीवा पे स्वाद लिया, तो जीवा के माध्यम से खट्टा है मीठा है तीखापन है इसको भी जानने वाला मैं हूं। स्पर्श, गर्म है ठंडा है कोमल है अथवा कठोर है इसको भी जानने वाला स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से मैं हूं। सुगंधी दुर्गंधी को भी जानने वाला मैं हूं। तो संसार में पांच चार ही तो पांच ही विषय तो हैं, इन पांचों विषयों को जानने वाला मैं हूं तो मैं सर्वज्ञ हूं नहीं हूं। बोलो भाई, सर्व माने पांच ही विषय हुआ। अब इन्हें कहना महाराज जी सर्वज्ञ हो, तुम्हारी टीवी खराब है मेरी टीवी बना दो। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप तो त्रिकालज्ञ हैं सर्वज्ञ है तो बता दो मेरी टीवी खराब है टेलीविजन बना दो। इसका नाम सर्वज्ञता नहीं है, ठीक है। तो यहां बताया, अच्छा एक आप लोग कहते भी हो हम सबको जानते हैं सबको पहचानते हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई पहचान बोलते नहीं बोलते भाई। पत्नी के साथ रहते रहते 50 साल हो गए, महाराज आज तक वो हमें नहीं पहचान पाई, बेवकूफ की बेवकूफ रह गई, आज तक मेरे पहचान नहीं पाई, बोलते नहीं बोलते। मेरा बेटा मेरे से ही पैदा हुआ, लेकिन आज तक मेरा बेटा भी मेरे भाव को पहचाने। अच्छा बताऊं, आप आत्मा हो, आपकी सत्ता के साथ दूसरी सबके सब क्या है, अनात्मा है। अनात्मा कभी आत्मा को प्रकाशित कर ही नहीं सकता है, तो शिकायत नहीं है, आपका अपना स्वरूप ही है। आप सबको जान तो सकते हो, लेकिन जो जिसको जान सकते हो, जानी जाने वाली वस्तु अनात्मा है, वह जानने वाले को कभी जान नहीं सकती है। इसी से सिद्ध हो रहा है कि आप क्या हो, चित्त स्वरूप हो, सबको प्रकाशित करने वाले हो, यहां तक कि आप आनंद रूप हो। आप क्या हो, आनंद रूप है कि दुख रूप दिखते हैं, है आनंद रूप, लेकिन अभी अकेले में पूछो महाराज जी सबसे दुखी मैं हूं, आज दुनिया में सब सुखी हैं लेकिन मेरे से दुखी कोई व्यक्ति, अकेले में पूछो लोगों बताएंगे, कोई कहां अपने आप को सुखी मानता है, कोई अपने आप को तृप्त कहां मानता है, कोई बिल्ला अकेला व्यक्ति भले हो जाए, कोई शेर हो जाए, लेकिन सब तो यहां भेड़िया या गीदड़ वाला है, सब दुखी है। कोई परिवार से दुखी है, कोई धन से दुखी है, किसी को सम्मान नहीं मिला तो दुखी हो गया, किसी को शरीर का दुख है, हर व्यक्ति किसी को हार के दुखी है, और कोई जीत करके भी दुखी है, कोई जीत करके भी, तो संसार में हर व्यक्ति दुखी दिखता है, लेकिन वास्तव में आपका स्वरूप दुखी नहीं है, आपका स्वरूप क्या है, सुख। अब सुख स्वरूप कैसे हैं भाई, आप दुनिया को क्या देना चाहते हो, सुख देना चाहते हो दुख देना चाहते हो, कोई व्यक्ति किसी को दुखी करना चाहता है क्या, हर व्यक्ति सुख देना चाहता है। आप वही देना चाहते हो जो आपके पास होगा, जिसके पास जो चीज होगी नहीं वह दूसरे को देना चाहेगा क्या, भाई हमारे पास धन होगा तो हम दूसरे क्या देना चाहते हैं, धन हमारे पास लोभ होगा तो हम दूसरे क्या देना चाहेंगे, लोभ। लेकिन हर व्यक्ति दूसरे क्या देना चाहता है, सुख। तो आपके पास निश्चित ही क्या है, सुख है, लेकिन उस सुख की पहचान न होने के कारण हम अपने आप को दुखी माने हुए हैं। अब वह सुख कहां है, तो बताया कि सुख तो आपके मन की शांति के अनंतर आपके भीतर स्वयं ही है। और उस सुख का हम सब अनुभव करते हैं गहरी नींद में, सुसुप्ति में। सुसुप्ति में जो सुख मिलता है वह सुख किसका है, पत्नी का, पुत्र का। यहां तक बिजली एसी कब बंद हो गई भी एहसास नहीं हुआ, वह सुख आपका अपना ही है। लेकिन ऐसा सुख स्वरूप आत्मा होता हुआ भी उसी के ही आश्रय पर, उसी को ही विषय बनाने वाली एक अविद्या है, अज्ञान है, जिसने आपको ढक लिया है। जैसे पानी है, पानी के ही आश्रय पर पैदा हो जाती काई, शैवाल, क्या बोलते हैं, एल्गी, शैवाल, काई। पानी का रंग दूसरा है और उसी के आश्रय पर और उसी को विषय बना लेती, उसी को ढक लेती है, कौन, काई और शैवाल, एल्गी। और पानी के असली स्वरूप को ढकी कि नहीं ढकी, अब कुछ और ही दिखा देती है। तो उसी प्रकार से आपका जो स्वाभाविक सच्चिदानंद स्वरूप है उससे हम प्रच्युत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और इस शरीर में ही आत्मभाव करके अपने आप को काला गोरा, मोटा पतला, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अनर्थों को हम प्राप्त करते हैं। ते काई कैसे समाप्त होवे, ऊपर हमारे ऊपर जो जमी हुई काई है वह काई कैसे समाप्त होए और मुझे अपने स्वरूप का बोध कैसे होवे, इसी का निरूपण इस पूरे ग्रंथ में किया गया है कि हम अपने आप को वास्तविक मूल रूप में कैसे पहचाने। अभी तो बहुत पूछा जाए कि हम हैं क्या, तो हम यही अपना परिचय देंगे, मैं अमुक 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 हूं। भाई देखो, जितना भी परिचय आप देते हो सब आपका परिचय क्या है, वास्तविक नहीं है, कल्पित झूठा परिचय है। अभी आपसे पूछे आप कौन है, कहते पंजाबी हैं। पंजाब कहाँ है बताओ भाई, भाई देश के नाम से आपका अपना परिचय हुआ है ना, पंजाब है। अभी ये वाला पंजाब नहीं, यहां का पंजाबी कभी अपने आप को पंजाबी नहीं बोलता, पाकिस्तान के पंजाबी अपने आप को पंजाबी बोलता है, आप ध्यान देना। जो पंजाब का विभाजन के पहले जो पंजाब था ना, वहां से जो टूटने के बाद भारत में आए थे वो लोग अपने आप क्या बोलते हैं, पंजाबी हैं, है ना भाई। हम लोग क्या बोलते हैं, गुजराती। अब गुजरात कहाँ है, भारत में है लेकिन गुजरात तो नहीं है ना, अब तो क्या हो गया, अब महाराष्ट्रियन हो गए ना, महाराष्ट्र में रहते हैं। हमारा आइडेंटिटी कार्ड भी किसका बना हुआ है, महाराष्ट्र का बना हुआ, लेकिन अपने आप क्या आज भी मानते हैं, गुजराती मानते नहीं मान रहे, बताओ। देश के नाम से आपका अपना परिचय कर रहे नहीं कर रहे हैं, देश माने स्थान के नाम से, लेकिन वो स्थान सिंधी, सिंध कहां बचा, पंजाब में चला गया, लेकिन आज भी सिंधी टाइटल, सिंधी शीर्षक हमारा बना ही नहीं बना है। उसी प्रकार से हमारा जो परिचय है कभी स्थान के नाम से होता है, कभी हमारे व्यापार के नाम से होता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं। अरे इसके पहले भी तो आपकी अपनी सत्ता थी। कभी हमारा परिचय जाति के आधार पर होता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। कभी हमारा परिचय वर्ण के आधार पर होता है, काला हूं, गोरा हूं। आश्रम के आधार पर होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी, और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सन्यासी हैं। तो सन्यास भी हमारा परिचय क्या है, आश्रम। लेकिन सन्यास के पहले भी तो आप थे, फिर आप क्या थे, हु आर यू, आप कौन थे, उसका हमें अभी बोध है ही नहीं। बस बहुत गए तो हम मनुष्य हैं, हम क्या हैं, अरे मनुष्य भी तो एक क्या है, मनुष्य भी तो एक हमारा क्या वस्त्र ही तो है, चोला ही तो है। इस मनुष्य के शरीर में मैं रह रहा हूं, इस मनुष्य के घर में एक, आप लोग देखे नहीं देखे, पहले एक घोड़े की नाच होती थी शादी ब्याह में, बहुत पहले इनके समय थी नहीं थी, बरातों में घोड़ा नाचता था, कार्ड दस्ती का एक क्या होता था, घोड़ा होता था। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो जब छोटे बच्चे थे तो जिस शादी में गांव में, तो जिस शादी में घोड़े की नाच हुए ना, तो बच्चे खूब देखने जाते थे, शादी अच्छी मानी जाती थी। आप लोग नए जमाने के हो, पुराने जमाने वाले लोगों को मालूम होगा, आपके समय था ना गिरीश भाई, नहीं था घोड़े वाली नाच होती है अभी भी? तो घोड़े के भीतर एक आदमी घुसा रहता है और बैंड बाजा वाला बाजता है, घोड़ा घूम घूम करके नाचता था। तो सही बताओ आप छोटे बच्चों की अकल, असली घोड़ा है नकली घोड़ा है कैसे जाने बताओ। तो छोटा बच्चा हमेशा कहता घोड़े की नाच है, लेकिन अब बताओ घोड़े की नाच है कि आदमी की नाच है बताओ। लेकिन हम कहते किसकी है, घोड़े की नाच है। अच्छा वो घोड़ा जब नाचता था ना, असली है कि नकली है? बच्चों में होता था, दांत दिख रहा है, लगाम है, घोड़ा चल रहा है, तो असली होगा, उसको पहचान नहीं होती है। तो जब नाचता था तो उसका घांघरा थोड़ा सा ऊपर उठता था, हम लोग नीचे झांकते थे, छोटे बच्चे थे, दो पांव है तो दो पांव है तो नकली है, चार पांव हो तो असली है, ये पहचान बनाए हुए थे। तो जब नीचे देखते थे दो पांव दिखता था, इसका मतलब क्या हुआ, नकली है। तो उस घोड़े के रूप में कौन नाच रहा है, आदमी नाच रहा है। तो शरीर भी एक घोड़ा है, इस शरीर के भीतर जो शक्ति दे रहा है, ताकत दे रहा है, सत्ता दे रहा है, वह परमात्मा है। तो घोड़ा हमारा रूप नहीं है, इस घोड़े से हम निश्चित ही कोई अलग ही है। तो जो अलग हम हैं वह है कौन, इसी को जानना है तो हमें सनत सुजाति में आना पड़ेगा। और हमारे इस स्वरूप के ऊपर जो आवरण हटे हुए हैं, उन आवरणों को हटाना पड़ेगा। जब तक आवरणों को हटाएंगे नहीं, तब तक यह बोध हमें होगा नहीं। तो ज्ञानवान तो बहुत, क्योंकि पिछली बार बहुत कुछ बताया गया था, पिछली बार भी शायद 20-22 दिन का प्रवचन था, हमें ऐसा लगता है 20 से अब नहीं 15 दिन का एक था, और शायद स्वामी मोहनानंद जी चले गए थे 7-8 दिन का, एक उसी बीच में लगा हुआ था, तो 22-23 दिन का था। तो शायद पहला अध्याय अभी हमने देखा नहीं, लेकिन पहला अध्याय लगभग हमें लगता है पूरा हो गया था, जहां बताया गया हाँ पहला अध्याय, अच्छा पहला अध्याय पूरा हो गया था। तो यहां बताया इसी अध्याय में, उस काई को हटाने के लिए, उस काई को हटाने के लिए द्वारांग सम्यक प्रवदन्ति संतो बहु प्रकारांग दुराचरांग, द्वारांग सम्यक प्रवदन्ति संत है, संत लोग सम्यक द्वारांग प्रवदंती, अच्छे प्रकार से कुछ दरवाजे बताते हैं, कुछ रास्ते बताते हैं, उन रास्तों से हम उस कालिमा को या उस हम काई को, उस हम आवरण को हटा सकते हैं। वह हटाने के तरीके बहु प्रकारांग, अनेक प्रकार के हैं। काई को हटाने के लिए तरीके क्या हैं, अनेक प्रकार के हैं, लेकिन अनेक प्रकार के दरवाजे काई होने पर भी उन साधनों को उपलब्ध करना इतना आसान नहीं है। दुराचरांगी बहुत कठिनाई से साध्य हैं। भाई बोल देखो, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, कहना कितना आसान है बताओ, लेकिन सेवा को व्यवहार में लाना कठिन है कि आसान है? अरे बुढ़ापे में सच सेवा करने के लिए अपने आप का बलिदान देना पड़ता है, अपने मैं को किनारे करना पड़ता है, तब जाकर के दूसरे की सेवा हो सकती है। प्रवचन में हम कई बार आपसे पहले भी बता चुके हैं, भीष्म पितामह अपने पिता की सेवा किया, अपने पिता की सेवा के लिए भीष्म पितामह ने सारी जिंदगी प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं विवाह ही, मतलब पिता के विवाह कराने के लिए उसने अपने विवाह को क्या कर दिया, ताक पे रख दिया। क्या इवा भीष्म पितामह के मन में काम विकार नहीं आता होगा? बोलो भाई, जब वृद्ध पिता के मन में काम विकार आ सकता है तो क्या बच्चे युवा के मन में नहीं आता होगा? लेकिन उसने अपने आपके काम विकार को रोका, दम और श्रम के माध्यम से रोका और पिता के सुख को महत्व दिया और अपने सुख को किनारे रख दिया। वहीं पिता को सुखी करने के लिए भीष्म पितामह ने राज्य का भी त्याग कर दिया और सारी जिंदगी एक सेवक की तरह राज्य के प्रहरी रहे। और आज हम लोग अपने सुख के लिए, अपने राज्य के लिए अपने पिता को कहां डाल देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। सही बता रहा हूं, बड़ा कभी कभी महात्मा लोग भी जाते हैं वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने के लिए, अब बड़ी तालियां भी बजाते हैं उद्घाटन करते वक्त, लेकिन तालियां नहीं, शर्म से आंखें नीची हो जानी चाहिए कि इस भारत भूमि में, जिस भारत भूमि में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का नारा दिया जाता है, जहां वेद वाक्य ऐसा बोलते हैं, वहां के माता पिता कहां रहें, वृद्धाश्रम में रहें। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि हमारी प्राइवेसी में दखलंदाजी हमारा बाप करता है, और कोई हेतु नहीं है। बाप को कितना खर्चा चाहिए बताइए, आपके अनर्गल कामों को रोकता है, आपको गलत रास्ते से जाने से मना करता है, इसलिए उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगती है, और उस माँ बाप को कहां रहना पड़ रहा है। हम उस खानदान, उस परंपरा से संबंधित है जहां भगवान श्री राम पैदा हुए, कि पिता के वचन की रक्षा के लिए, अपने भाई के सुख के लिए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहां तक कि आप देखना, 14 साल के बाद जब वनवास पूरा हुआ तो भगवान श्री राम हनुमान जी को भेजते हैं कि भरत को देख के आओ, भरत को यदि राज्य में थोड़ा सा भी सुख मिल रहा हो तो हम सारी जिंदगी जंगल में ही रहेंगे, अयोध्या जाएंगे नहीं है, भरत भैया को हम दुखी करना ही नहीं चाहते हैं इस तुच्छ राज्य के भोग के लिए। अब कल्पना करो, हम उस परंपरा से संबंधित हैं, आज उसी परंपरा में हमारे बीच में हो क्या रहा है, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 5 रुपए जमीन के गिफ्ट के लिए, 2 बीते जमीन के लिए, 2 अंगुल जमीन के लिए क्या हो रहे हैं, खून खराबे लगाइया झगड़ा। तो भाई बोलना बहुत आसान है, लेकिन दुराचरांगी, उनको आचरण में लाना, उनको जीवन में उतारना, ये बहुत ही कठिन साधन है। तो हम लोग बोले नहीं, बल्कि इन साधनों को अपने जीवन में उतारें, तब जाकर के कल्याण होगा। विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है, उसमें शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि औषधि औषधि चिल्लाने से, दवाई का नाम लेने मात्र से आपकी रोग व्याधि की निवृत्ति नहीं होगी, बल्कि उस औषधि को क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और खुद खाओगे तो आपका रोग दूर होगा। इन आप लोग दवाई खाते हो, दूसरे को खिलवाते हो। हम बीमार हैं, हमने कहा गिरीश भाई आप मेरे हिस्से की दवाई खा लो, आपका धर्म कर्म ही तो करते हो, और क्या, पति कहता पति का हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, पत्नी का हिस्सा पति, पत्नियां इसी में इछलाई फिरती हैं कि आप कथा वथा सुन लो, देखो यहां भी आदमी ज्यादा आए हैं, माताएं थोड़ा सा कम आई हैं, ये माताएं इसी भ्रम में रहती हैं कि पति सत्संग सुन लेगा ना, तो तो आधा हिस्सा तो मेरा गया ही नहीं, कहीं गया ही नहीं है, तो आधा हिस्सा तो मेरे को मिल ही जाएगा, अब क्यों सुनने जाए। अरे भाई, जिस जो सुनेगा उसी का कल्याण होगा, जो धर्म कर्म करेगा उसी को उसके पुण्य की प्राप्ति होगी। इनका किया हुआ आपको नहीं लगने वाला है, आपका किया हुआ इनको भी नहीं लगने वाला है। हम सब लोग कहते महाराज जी, पंडित जी ने कहा है वो क्या महामृत्युंजय का जाप कर दो, आपके हिस्से का जाप मैं ही कर देता हूँ, चलो। अरे भाई, जो जो अब बताओ, हम करेंगे नहीं करेंगे, हमारे अंदर आपके दुख की निवृत्ति की भावना होगी नहीं होगी, ये क्या पता है। हाँ ठीक है, मुझे मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा, आप जियो मरो, हमें क्या करना है, डॉक्टर की वही हालत है। लेकिन भाई, आप यदि एक एक पल एक एक मंत्र जाप करोगे ना, तो हर जाप के बाद एक भावना रखोगे, इस जाप से हमारा बेटा या हमारी हमारे हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, तो आपका जो पॉजिटिव चिंतन है ना, सकारात्मक चिंतन, आपको वही स्वस्थ कर देगा। लेकिन आप सोचो हम दूसरे से करवा ले, तो दूसरे का किया हुआ दूसरे को फल मिलेगा, लेकिन आपको फल मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए जो दवाइयां बताई जा रही हैं, उन दवाइयों का आपको खुद ही खाना पड़ेगा। पहली दवाई है सत्य। पहली दवाई क्या है? सत्य। जीवन में यथार्थ भाषणम, कहना यथार्थ बोलो, अभूत हितम च, और कम से कम ऐसा बोलो, ऐसा यथार्थ न बोलो जिसमें किसी भूत का किसी प्राणी का बुरा होवे, प्राणी का कल्याण होवे, ऐसा सत्य का अनुष्ठान व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए। अब वास्तव में सत्य बोला ही नहीं जाता, सत्य तो मौन है। सत्य बोला जा सकता है क्या? आप लोग क्या सत्य बोलते हो? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, बताओ आपकी कोई पत्नी है क्या? अरे आपका अपना शरीर ही नहीं है, सत्यता देखा जाए, आपका अपना यह शरीर है क्या? जब आपका अपना शरीर ही नहीं है, तो पत्नी आपकी अपनी कहां से हो सकती है? ये घर आपका अपना कहां से हो सकता है? बेटा आपका अपना कहां से हो सकता है? लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी है, लोग कहते हैं कि मेरा अपना, लोग ही तो कहे, वो सात सात होता, चौदह कितना फेरा होता भाई शादी में, सात सात फेरा लेकर के कहते हैं आज से आपकी पत्नी, और लोगों ने कह दिया, आपने उसको क्या मान लिया? अपनी पत्नी मान लिया कि नहीं मान लिया? तो लोगों के कहने पर माना कि आपकी अपनी है कोई चीज, बताओ। अरे लोगों ने ही कह दिया तुम ब्राह्मण है, लोगों ने कह दिया तू क्षत्रिय है, नहीं जब बच्चा पैदा हुआ था तो क्या था बताओ, ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था? अच्छा लोगों ने ही कहा कि तू हिंदू है, लोगों ने कह दिया तू क्या है, मुस्लिम है, जब पैदा हुआ था तो क्या था बताओ, हिंदू था मुस्लिम था? लेकिन बस लोगों ने मान, लोगों ने कह दिया, और लोगों कहे हुए को हमने क्या किया, मान लिया। तो इसलिए सत्य बोला नहीं जाता है, सबसे बड़ा सत्य है क्या? मौन कहना। इसी मौन पे आगे, ये मौन क्या है, कैसे है? दूसरा है आजव। जीवन में एक सरलता होनी चाहिए, कुटिलता का त्याग होए, मोह छल छिद्र कपट ना भावा, निर्मल जन जो सो मोही पावा। सुपंखा गई थी भगवान के पास, अब भगवान कहते जो मेरे पास आएगा मैं उसके लिए सहर्ष उपलब्ध हूं, लेकिन किस बुद्धि से आवे? सरल बुद्धि से आवे। इसलिए देखना बच्चों को भगवान जल्दी मिलते हैं, ध्रुव को जल्दी मिल गए, प्रहलाद को जल्दी मिल गए, लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, कुटिल हो जाता है, चतुर हो जाता है, तो भगवान उससे, जितनी कुटिलता ही भगवान और भक्त के बीच की एक दूरी तय करती है, जितनी कुटिलता हमारे भीतर भरी जाएगी उतना ही वो कुटिलता क्या होगी, दूर होगी, उतना ही भगवान से हम दूर होंगे। तो सुपंखा गई थी भगवान के पास, भगवान का चुनाव करने के लिए, सुपंखा का कोई दोष नहीं था, हर व्यक्ति हर जीव भगवान के पास जाता है, लेकिन सुपंखा सरल बन के नहीं गई थी, कुटिल बन करके गई थी। इसलिए भगवान ने कहा कि हे देवी, पहले तुम लक्ष्मण के पास जाओ, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है, कुमार माने बुराइयों को मारने वाला है, बुराइयों को समाप्त करने वाला है, तुम्हारे भीतर जो कुटिलता है ना उसको हटाने वाला है, तो तुम पहले उसके साथ वैराग करो, विवाह करो। तो भगवान को पाने के लिए पहले तुम्हें वैराग्य के साथ विवाह करना पड़ेगा, जीवन वैराग को लाना पड़ेगा, फिर तुम्हारी भक्ति होगी। वैराग के बिना भक्ति नहीं होती, ये भी ध्यान देना। आज हम भक्ति करते हुए लोग दिखते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति होती क्या? आज कहीं तीर्थयात्रा में जाओ, साईं बाबा के यहां चले जाओ, तिरुपति बालाजी चले जाओ, कहीं चले जाओ, बताओ भगवान के लिए जाते हैं भोग के लिए जाते हैं? सभी लखत महाराज जी वहां जब से गए मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, तो हम वहां जाते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए, भोग के लिए गए हैं, भगवान से प्रेम नहीं था। यदि प्रेम होगा तो वहां मांग नहीं होगी, जहां प्रेम है वहां मांग नहीं होगी, और जहां मांग है वहां प्रेम नहीं है। तो हम कुटिल हैं, तो कुटिलता को किसमें बदलना है? बोलो भाई, सरलता में। हमारी सबरी मैया बहुत सरल है, जो है जैसी है अपने आप को उसी रूप में पेश कर देती है, इसलिए भगवान उसको सहज उपलब्ध हो जाते हैं। उधर कुब्जा देखना, सरल है, भले शरीर से टेढ़ी है, लेकिन भगवान उसको सहज मिल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कुटिल है उसको भगवान मिलते ही नहीं है। इसलिए माताओं को भी थोड़ा भगवान मिल जाते हैं जल्दी, क्योंकि माताएं भी थोड़ी सीधी सादी होती हैं, इनमें भी चालाक बुद्धि कम होती है, क्योंकि योग अब वाली माताओं में थोड़ी चालाकी आ गई है। इन पहले वाली जो माताएं थी ना, वो तो बहुत सरल थी, भोली भाली थी। सिखी ध्वज और चुगाला के प्रसंग में आप देखना, चुगाला को बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है, लेकिन सिखी ध्वज कितना ज्ञान के लिए तड़पता रहता है, तब जाकर उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा हरी, लज्जा होनी चाहिए। कैसी लज्जा? अकार्य करणे लज्जा, जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य को करने में हमें क्या आनी चाहिए? लज्जा आनी चाहिए। लेकिन आज तो भैया बड़ी मुश्किल काम हो गया है, हम उसी कार्य में अपनी शान समझते हैं। अभी मैं आजमगढ़ साइड में था, आजमगढ़ है, वहां शिवरात्रि पर कथा थी, तो वहां लोग बताते हैं, महाराज मेरा लड़का ना पुलिस में है, शादियों में होता ना दहेज, तो वेतन तो पाता है 20,000, अब 20,000 रुपए ना ऊपर की इनकम हो जाती है। अब बताओ, माँ बाप अपने बेटे को पक्का बता रहे हैं कि नंबर एक का चोर है, घुसखोर है, क्योंकि 20,000 तो उसका लीगल कमाई है। अब 20,000 कैसी कमाई है? तो चोरी की कमाई का वो क्या कह रहा है? गर्व से, शान से बोल रहा है। तो बताओ, अकार्य करेंगे लज्जा है कि उसको गर्व महसूस कर रहा है? इसको लड़की वाले भी वही खुश होते हैं, लड़का 20,000 कमा रहा है, 20,000 ऊपर ही इनकम है, चलो। मतलब अपनी लड़की के लिए नंबर एक का चोर ढूंढ रहा है आदमी, शादी के लिए क्या ढूंढ रहा है? और वो माँ बाप भी बड़े शान से बोल रहा है, यहां बोलते नहीं बोलते, लेकिन उधर तो बड़े शान से बोलते हैं, क्यों भाई? नहीं, आजमगढ़ यूपी में पूरा ही बोलते हैं, बड़े शान से। बैंक में बच्चा वहां काम करता है, कहां पे? कचहरी में, कोर्ट में, कोर्ट में बड़ी ऊपरी इनकम है, मेज के नीचे वाली इनकम, इतना तो कमा लेता है, वेतन है, इससे ज्यादा तो ऊपरी इनकम है। ऊपरी इनकम माने समझ लेना, चोरी वाली कमाई, मतलब आप खुद अपने बेटे की प्रशंसा कर ले, मेरा बेटा नंबर एक का तो चोर कहते हुए आपको शर्म नहीं बल्कि शान बखार रहे हो। तो ऐसा नहीं भाई, ही माने लज्जा होनी चाहिए। अकार्य करण है, जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए इसे कर। शौच क्या होनी चाहिए? पवित्रता होनी चाहिए। दम, अच्छा दम, इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, और शौच थोड़ी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता सबसे बड़ी है, पवित्रता साबुन से नहलाना नहीं पवित्रता है। दो मल हैं, दो मल और मूत्र हैं, शरीर में मैं बुद्धि करना और शरीर से पृथक संसारियों में मम बुद्धि करना। तो मैं और मम बुद्धि, यही मल और मूत्र हैं, इन दोनों का त्याग कर दो तो आपको परमात्मा सहज से ही उपलब्ध हो जाएंगे। और दूसरा विद्या, विद्या मान हुआ ज्ञान, ब्रह्म विद्या, यही छह चीजें हैं जो आपके ऊपर जो मान और मोह की काई जमी हुई है, उस मान और मोह की काई को हटा करके आपको अपने स्वरूप में निष्ठ करेंगे। कल से हम द्वितीय अध्याय में चलेंगे थोड़ा सा, आज मैं थोड़ा सीजी सुन लूंगा कि कहां तक है? पिछले वर्ष हुआ था, लेकिन एक प्रसंग है कि हमारा जो स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म रूप है, इसके ऊपर एक काई जम गई है। किसकी काई जमी है? मान और मोह की काई जमी है। इस मान और मोह की काई को हटाना है, हटाने के लिए ये साधन है। पहला साधन है सत्य, दूसरा साधन है सरलता, तीसरा साधन है ह्री माने लज्जा। लज्जा माने किसमें? अकार्य करणे, जो कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा काम को करने में आपको क्या आनी चाहिए? लज्जा। चौथा है दम, इंद्रियों का निग्रह। अगला है शौच, पवित्रता। इससे भी आगे है विद्या, ब्रह्म विद्या। ये छह साधन हैं, छह ना, एक दो तीन चार पांच छह, छह हो गए। सत्य, सरलता, ह्री माने लज्जा, दम इंद्रियों का निग्रह, शौच पवित्रता और विद्या, ये छह साधन हैं। यह छह ही आपके भीतर की काई को हटाएंगे और आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति कराएंगे। और इसमें कौन कौन से बाधक हैं, क्योंकि आपने सुना बहुत है कथा, इतने जितने साल हमारी उम्र हो गई शायद उतने साल आप कथा सुनते हुए हो गए होंगे, लेकिन फिर भी इन आवरणों को कैसे और हटाएंगे और क्या क्या कमियां हैं, ये सारी कमियां दूसरे अध्याय में बताई जाएंगी। इस पर चर्चा हम लोग कल से करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।